Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, Brahmananda Valli, presented by Swami Sri Vishwatmanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Maharaj ji bolte the ki ye ghar mane kya hai? Ye grih, Sanskrit mein isko गृह बोलते हैं। तो ये ग्राह में और ग्रहण करने में जो धातु है वही गृह में धातु है। ये घर जो है ये पकड़ लेता है। जहां आपने घर बनाया तो आप कहीं भी हो दुनिया भर में या तो ख्याल रहेगा और या तो लौट फिर करके उस घर में आ जाएंगे। अब ये क्या गारंटी है कि शरीर छोड़ने के बाद फिर आप उस घर में नहीं आएंगे? जब घर में आसक्ति हो गई तो उसी के चारों ओर मटराएंगे ना। तो घर बनाओ वो तो ठीक है, लेकिन सावधान, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। दत्तात्रेय जी ने कहा कि सांप से मैंने ये शिक्षा ली कि वो अपना घर नहीं बनाता है, वो चूहे के बिल में ही जो है रह लेता है। एक सज्जन थे तो वो ऐसा बोलते थे, खोदत खोदत मूसा मर गए, मूसा माने चूहे, खोदत खोदत मूसा मर गए और मौज करी भुजंगा ने। हमारे एक प्रिंसिपल थे तो वो कहते थे कि फूल्स मेक हाउसेस, वाइज मैन लिव इन इट। लोग बनाते मकान किस लिए? एक किराए पे उठा देंगे, किराए की पहले सोच लेते हैं, रहने के लिए पीछे बनाते हैं। तो बोले देखभाल कौन करेगा इसकी? हम बाहर चले जाएंगे तो कौन देखभाल करेगा? तो विज्ञानम च अविज्ञानम च जड़ चेतन, जो कुछ भी संसार में ये द्वंद्वात्मक जगत है, ये सब इस अहम के ऊपर ही आधारित है। जब एक शरीर में हमारी अहम बुद्धि हो जाती है तो फिर जितने भी द्वंद्व हैं वो सामने उपस्थित हो जाते हैं। आप उनको ज्ञान मात्र माने ये तो बोध है, और वास्तविक माने ये अबोध है, अज्ञान की अवस्था है। वेदांत आपको बोध प्रदान करता है, वो ये नहीं कहता है कि आप इनको देखो मत। ये तो जब आप आ गए इस शरीर में बैठ गए तो कुछ ना कुछ तो आपको अनुभव होगा ही, जड़ चेतन, जड़ अनुभव हो, चेतन अनुभव हो, और क्या सत हो, त्यत हो, निरुक्त हो, अनिरुक्त हो, निलय हो, अनिलय हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो अनुभव होगा ही। अच्छा, इसको ऐसे भी कभी कभी सोचना चाहिए कि जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो ये मैं आपको कहां देख रहा हूं? वहां देख रहा हूं कि यहां देख रहा हूं? बोले वहां को यहां देख रहा हूं। वहां को देख तो रहा हूं यहां, और यहां मैं वहां की कल्पना कर रहा हूं। बस यही बोध है नारायण। आप सारी दुनिया को अपने अंदर ही देखते हो, और जैसा संस्कार होता है वैसे ही मान लेते। सत्यम च अनृतम च सत्यम अभवत यदिदम किंच तत्सत्यम इति आचक्षते तदप्येष श्लोको भवति। व्यवहार्य वस्तु सत्य और अव्यवहार्य वस्तु अनृत, झूठ। नारायण, ये सब यही मैं हो गया है। तो हो गया है माने ये मैं बैठ करके ही प्रतीत होता है। सुषुप्ति में क्यों नहीं प्रतीत होता, ये इस पर विचार करना चाहिए। अगर ये संसार है तो हर समय मालूम पड़ना चाहिए ना। जब सुषुप्ति हो जाती है तब मालूम नहीं पड़ता, मूर्छा हो जाती है तब मालूम नहीं पड़ता, समाधि लग जाती है तब मालूम नहीं पड़ता, और मर जाते हैं तब मालूम नहीं पड़ता। इसका मतलब ही है कि हमारे करणों के रहते हुए ही ये दुनिया दिखती है। करण ही दुनिया है और कुछ नहीं है। और आत्मा में जो करणता आती है वो सब पुराने संस्कारों से आती है। अभी प्रश्न वही चल रहा है कि ब्रह्म है या नहीं, तो बोले ये सब जो है देखो ना, अब भी क्या ऐसा लगता है कि ब्रह्म नहीं है? तुम हो तो ब्रह्म है और ब्रह्म है तो तुम हो, एक ही चीज है। अच्छा, एक प्रमाण और देते हैं। अब ये सातवें अनुवाक में, असद्वा इदमग्रे आसीत ततो वै सत् अजायत तदात्मानं स्वयं अकुरुत तस्मात् तत्सुकृतम् उच्यते इति। यद वै तत्सुकृतम् रसो वै सः रसम् ह्येवायम् लब्ध्वा आनन्दी भवति को ह्येव अन्यात् का प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येव आनन्दयाति। कहते हैं पहले असत था। बोले अभी तो कहा था कि पहले ब्रह्म था, तो बोले ब्रह्म तो था लेकिन असत का मतलब उसका उस समय नाम जो है वो असत था। अच्छा, ये शरीर जब पैदा हुआ तो इसका यही नाम था जो आज है? कोई पप्पू कहता था, कोई बब्बू कहता था, रहा है। तो भाई ये शरीर था तो सही लेकिन ये नाम वाला नहीं था। तो ये किस नाम वाला था? कि असत नाम वाला ब्रह्म था। असत का मतलब है ये जो सत व्यावहारिक जगत है इसका बीज रूप उस समय ब्रह्म में मौजूद था। नाम रूप के बीज से युक्त जो ब्रह्म है उसको असत कहते हैं। बहुत से लोग तो इस श्रुति को लेकर के और शून्यवाद के कहते हैं कि देखो उपनिषदों में भी शून्यवाद है, कह रहे हैं असद्वा इदमग्रे आसीत, पहले असत ही था माने शून्य ही था। तो ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है। तो ये जो व्यवहार्य सत है इसी ये जो है उसी असत से पैदा हुआ है। तदात्मानम स्वयं अकुरुतो, उसने उस असत ने ही अपनी सत्य के रूप में रचना की। माने उस असद विशिष्ट असद नाम रूप विशिष्ट ब्रह्म ने सद नाम रूप विशिष्ट की रचना की। हो गए। तस्मात् तद् सुकृतम् उच्यते, इसलिए उस ब्रह्म को सुकृत बोलते हैं माने चूंकि उसने स्वयं अपनी ही रचना की। अब उसका स्वरूप बताते हैं कि तद यदवई तत् सुकृतम रसो वै स। वो जो सुकृत नाम माने ब्रह्म है वो रस रूप है। ये आनंदमय कोश की प्रतिष्ठा क्या है यही तो प्रसंग चल रहा था ना। बोले इसकी प्रतिष्ठा ब्रह्म है। आनंद जो जो भी किसी भी उपाधि से उत्पन्न हुआ सा मालूम पड़ता है, भोग होता है, उसकी जड़ कहां पे है? तो बोले वो ब्रह्म है। रसो वैसा, इसका मतलब है कि ब्रह्म जो है वो रस रूप है। अच्छा, ब्रह्म अनुभव ना होता सही, लेकिन क्या कोई ऐसा आदमी है जिसको कभी आनंद अनुभव ना होता हो? ऐसा दुनिया में दुखी से दुखी प्राणी भी होगा तब भी उसको कहीं न कहीं कभी न कभी किसी न किसी रूप में सुख की अनुभूति होती है। तो जैसे एक बूंद पानी की कहीं नजर आ जाए तो अनुमान होता है कि इसका कहीं समुद्र भी होगा। इसी प्रकार से ये आनंद की अनुभूति सबका विषय है। तो ये किस समुद्र से बूंद निकली है उसी को ब्रह्म रूप बोलते हैं, ब्रह्म रस। रस वो वही स, रस की परिभाषा दी है भाष्यकार ने, रसो नाम तृप्ति हेतु आनंद करह। रस किसको कहते हैं? कि जिससे तृप्ति हो और जो आनंद पैदा करता हो, सुख पैदा करता हो। भोजन करने में बड़ा सुख है और फिर जब पूरा हो जाता है तो तृप्ति हो जाती है। नारायण तृप्ति माने बस, अब और नहीं चाहिए। लेकिन ये ब्रह्मानंद ऐसा है कि इसमें और नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अच्छा खट मान लो मीठा तो और नहीं चाहिए, लेकिन आपको उस समय कोई खट्टा दे दे, चरपरा दे दे, बोले चलो ठीक है, रस जाएगा, ठीक हो जाएगा। माने बदल बदल करके आपको आनंद चाहिए, अभिप्राय कहने का, लेकिन आनंद आनंद से कभी इति अलम नहीं होता। बोले अब खा लिया तो अब सो लें, तो अब सोने का आनंद लेते हैं। आनंद से तो एक क्षण को भी कभी अलहदा हो ही नहीं सकते। तो रसो वैसा, वह जो ब्रह्म है वो रस स्वरूप है। रसम हेव अयम लब्ध्वा, इस रस को जो उपलब्ध कर लेता है आनंदी भवती, वो आनंद रूप आनंदमय हो जाता है। आनंदी माने आनंदमय हो जाता है, आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। ये अयम कौन है? रसम हेव अयम लब्ध्वा, अयम तो परमात्मा हो गया। किसने इस रस को लब्धा प्राप्त किया? तो ये बनाते हैं ना गुलाब जामुन, क्या गुलाब जामुन ही बोलते होंगे यहां भी, तो कैसे बनती है ना? पहले तो उसे पकाते हैं ना, जब वो तल लिया उसके बाद में फिर उसे रस में डालते हैं और फिर निकाल लेते हैं कि उसी में पड़ा छोड़ देते हैं। तो निकाल लेते हैं, उसी में पड़ा छोड़ दोगे तो गल जाएगी, तो उसमें से निकाल लेते हैं तो वो रस कहां गया? बोले उसमें ओतप्रोत हो गया। तो ऐसे ही ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंतःकरण है ना, इसमें इस ब्रह्म रस को यदि भरो तो इसमें वो ब्रह्म रस ओतप्रोत हो जाता है। और फिर जब इससे व्यवहार होता है तो बस मीठा 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 मीठा, यही फर्क है ज्ञानी अज्ञानी में। नारायण उसका चलना फिरना बोलना छूना सब आनंदमय ही होता है। तो इस रस को जो लब्ध कर लेता है वो स्वयं आनंदी हो जाता है। को हेव अन्यात कह प्राण्यात यदेश आकाशे आनंदो न स्यात, यदि ये हृदय में आनंद स्वरूप परमात्मा ब्रह्म नहीं होता तो कौन जो है प्राणन क्रिया करता, कौन अपानन क्रिया करता? माने ये शरीर की चेष्टा क्यों होती? सारी चेष्टा सुख के लिए तो हो रही है। खाते हैं तो सुख के लिए, सोते हैं तो सुख के लिए, भोगते हैं तो सुख के लिए, आते हैं जाते हैं करते हैं सब। अगर सुख ना हो तो कोई आदमी कोई चेष्टा नहीं कर सकता। तो ये प्राण अपान का तो नाम ले दिया है, तो इसमें सभी चेष्टा का मतलब है। संपूर्ण चेष्टा किसके लिए हो रही है? ये शायद पहले दूसरे दिन ही चर्चा हुई थी, किसके लिए हम कर रहे हैं। संघातस्य परार्थत्वात्, ये 52 चीजों की जो इकट्ठा हुआ है ये शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण, नारायण 52 इसके अवयव बताए थे ना, तो जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती हैं तो वो अपने लिए इकट्ठी नहीं होती हैं, किसी दूसरे के लिए वो इकट्ठी होती है, उनका कोई भोक्ता अलग होता है। तो वो कौन है भोक्ता? नारायण, और तुमने जानबूझ कर इकट्ठी की है क्या? ये सच्ची सच्ची सोचना नारायण, ना अपनी खुशी आए थे, और गालिब साहब कहते हैं ना अपनी खुशी चले। अरे जब होश आया तब तो ये 52 चीजें इकट्ठी हो चुकी थी नारायण। तो किसने इकट्ठी की? परमात्मा ने इकट्ठी की। क्यों की? बोले जीव के भोक्ता के लिए, भोग के लिए। अरे तो जीव कौन है? तदेव अनुप्राविशत, वही तो जीव रूप से प्रविष्ट है, उसने अपने ही भोग के लिए ये रचा है। तो ये सारी क्रिया जो हो रही है ये किसके लिए हो रही है? मस्त रहो नारायण, परमात्मा ही इसको भोग कर रहा है। मैं भोग कर रहा हूं ये तो अज्ञान है, और परमात्मा इसका भोगता है ये उपासना है, भाव है। और वो परमात्मा और मैं एक ही वस्तु है, तो ये जीवन मुक्ति है। एष ही परमात्मा आनंदयाति आनंदयति सुखयति लोकम धर्मानुरूपम। अब ये भाष्यकार की पंक्ति है, वो कहते हैं कि ये यही जो आत्मा है यही सबको आनंदित करता है। पंचदशीकार ने लिखा कि मिठाई में मिठास किसकी है? शक्कर की है ना, जहां जहां शक्कर होगी वहां वहां मिठास होगी। तो जहां जहां आत्मा होगा वहां वहां आनंदानुभूति होगी, इसलिए ये सुख में रहता है और दूसरों को सुख देता है ना। आनंदयति, लेकिन कैसे? कि धर्मानुरूप, लोकम धर्मानुरूपम। अगर अधर्म रूप से व्यवहार करेंगे तो वो सुख नहीं देगा, वो दुख देगा। ये भाष्यकार का ये जो पक्ष है ये वेदांत में जरा लोगों को कम ग्रहण होता है। धर्म विहीन कोई वेदांत नहीं है। जीवन कैसे भी चले, हम तो वेदांती हैं, ये वेदांत नहीं है नारायण। धर्म पूर्वक जो जीवन चलता है उसी में से सुख निकलता है। अधर्म दुख का मूल है, तो धर्म के अनुरूप सुख प्रदान करता है ये परमात्मा। जब अपने अपने धर्म में आप ठीक ठीक रहें, आंखें अब रोजाना तो बोलते हैं भद्रम करणे भी श्रुणयाम, आखिर क्यों बोलते हो? कानों से हम भद्र ही सुने। अच्छा अभद्र सुनोगे तो कान मना कर देंगे क्या? कान तो भद्र भी सुनेंगे अभद्र भी सुनेंगे, लेकिन अभद्र नहीं सुनना है ये अधर्म है, और भद्र सुनना है ये धर्म है। तो धर्म के अनुरूप जो होता है उससे सुख की उत्पत्ति होती है, वरना आत्मा तो दुख में भी वैसा ही रहता है और सुख में भी वैसा ही रहता है। लेकिन अंतःकरण वैसा नहीं रहता है नारायण। जब अधर्म वासना होती है तो अंतःकरण का रूप जो है वो बदल जाता है, उसी में से दुख निकलता है। तो यहां भाष्यकार ने एक बात लिखी है कि जो ज्ञानी है वो तो धर्म के अनुसार आचरण करता है, इसलिए उसके लिए तो ये आत्मा सुख रूप है। और जो अज्ञानी है वो अपने को कर्म और कर्म फल का भोक्ता मानता है, और अगर आस्तिक है तो ईश्वर को फलदाता मानता है। जब फलदाता मानता है और अपने को कर्ता मानता है और ईश्वर और अपने में भेद मानता है, तो वो तो नारायण डरा डरा ही रहेगा। जब मरेगा ना तो उसे लगेगा, अरे फिल्म चलती है मरते समय, आप चाहे मानो चाहे मत मानो, जीवन में जो कुछ भी उसने किया है और भोगा है उसकी फिल्म तैयार होती रहती है। लेकिन ये बुद्धि जो है ये उसे कंट्रोल में रखती है, खराब सीन को नहीं आने देती है, अच्छे अच्छे सीनों को देखती रहती है। लेकिन जब मृत्यु का समय होता है तो बुद्धि का कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो उस समय खराब सीन भी आते हैं और अच्छे सीन भी आते हैं। तो उसमें उन सीन्स को देख कर ये होता है, मैंने ये बहुत गलत किया, ये काम तो मैंने बहुत अच्छा किया, अब अच्छा किया है तो भगवान मुझे स्वर्ग देंगे और बुरा किया है तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, नारायण अब तो नरक में जाना पड़ेगा। वही अज्ञान जो है उसका वो दुख का हेतु होता है। तो उसका दूसरा प्रश्न ये था ना कि ब्रह्म तो समान है, तो अज्ञानी को भी मिलना चाहिए। तो उसका उत्तर देते हैं कि अज्ञानी को नहीं मिलेगा ब्रह्म, उसको तो नरक स्वर्ग जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी अपनी धारणा ही ऐसी है कि मैं कर्म करने वाला हूं और फल भोगने वाला हूं और फल का भुगताने वाला मेरे से अलग है। तो ये भेद दर्शन के कारण ईश्वर से वो हमेशा डरता ही रहता है, वही भय का कारण होता है। तो कभी ईश्वर से एकता का अनुभव उसको नहीं हो सकता है। तो ये जो आठवें अनुवाक में पहली पंक्ति है ना कि भीषास्मात वात है पवते, इसके भय से वायु चलती है, तो ये इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जो अज्ञानी है उसकी दृष्टि में ऐसा है। ज्ञानी की दृष्टि, यहां भीषा का मतलब है अनुशासन, ये सारी सृष्टि ईश्वर के अनुशासन में चल रही है। और नारायण अज्ञानी मानता है कि डर के मारे सूरज निकल रहा है, पानी बह रहा है, धरती घूम रही है, नारायण इतना ही फर्क है। तो इस प्रश्न का उत्तर, इसमें तीन प्रश्नों में से दो का ही उत्तर दिया है श्रुति ने, ब्रह्म है ये सिद्ध किया, और फिर ज्ञानी को ही ब्रह्म मिलता है अज्ञानी को नहीं मिलता, इससे ब्रह्म की समता में कोई अंतर नहीं आता है। अज्ञानी को नहीं मिलता, ये अर्थापत्ति प्रमाण से निकल जाता है। यदा हेवेश एतस्मिन, ये सातवें का ही है, यदा हेवेश एतस्मिन अदृश्ये अनात्म्ये अनिरुक्ते अनिलयने अभयम् प्रतिष्ठाम विन्दते अथसो अभयम् गतो भवति। यदा हेवेश एतस्मिन उदरम् अन्तरम् कुरुते अथ तस्य भयम् भवति तत्सु तत्तु एव भयं विदुषो मनवानस्य तदप्येषो श्लोको भवति। अभय कब होता है मनुष्य? बोले जब वो अनात्मा, जो अनात्मा नहीं है, उसमें जब वो प्रतिष्ठित नहीं होता, आत्मा में ही प्रतिष्ठित होता है। और अनिरुक्ते, कारण में न कार्य में, शब्द का जो विषय है उसमें प्रतिष्ठित नहीं होता, शब्द का जो अविषय है उसमें प्रतिष्ठित होता है। अनिलयने, और जो अनिलयन रूप है, माने उसका मैं किसी में प्रतिष्ठित हूं ऐसा नहीं, सब मुझ में ही प्रतिष्ठित है, मैं बूंद नहीं हूं, मैं तो समुद्र ही हूं, मैं अंश नहीं हूं, इसलिए अंशी भी नहीं हूं। अभयम् प्रतिष्ठाम विन्दते, ऐसी जब वो प्रतिष्ठित होता है स्वरूप में, तब उसे अभय की प्राप्ति हो जाती है। तो महाराज जी ने तीन लक्षण ज्ञान के बताए हैं। आपको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, किसी से सर्टिफिकेट लेने मत जाओ। तीन लक्षण अपने में घटा कर देख लो, अगर ये तीन लक्षण हैं आ गए तो समझ लो ज्ञान हो गया। एक तो है उसमें अभय, अभय का मतलब डाकू लोग जैसे अभय निर्भय रहते हैं ऐसे नहीं, मृत्यु का भय लगता है कि नहीं, अपनी मृत्यु या दूसरे किसी की मृत्यु, मृत्यु से भय लगता है कि नहीं, एक। और जब मृत्यु आती है तो सब जबरदस्ती छूटता है नारायण, तो आप अभी छोड़ने को तैयार हो कि नहीं? सर्व सामर्थ्य का सर्व त्याग का सामर्थ्य, और अभी कुछ करने की, पाने की, भोगने की कुछ अपने में वासना जगती है कि नहीं, कहीं कमी मालूम पड़ती है कि नहीं, कभी मुझे इतना और जानना चाहिए, अभी मुझे इतना और पढ़ना चाहिए, अभी मुझे इतना और करना चाहिए, बस ये तीन लक्षण हैं, एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान, फिर कुछ करने पाने भोगने की इच्छा नहीं रहती, और एक अभय और एक सर्व त्याग का सामर्थ्य। सामर्थ्य त्यागो या मत त्यागो। और जो इसमें थोड़ा सा भी अंतर देखता है, मैं और हूं, ब्रह्म और है, मैं और हूं, ईश्वर मुझसे अलग कोई सकता है नारायण, तो यदि थोड़ा उदरम अंतरम कुरते, उदर माने थोड़ा सा भी, उत माने भी, अरम माने भेद, थोड़ा सा भी जो भेद करता है कि नहीं नहीं है, तो एक सज्जन थे तो वैसे तो समझदार थे, मगर वो उनकी बात में निष्ठा नहीं होती थी कि आत्मा ब्रह्म है, तो कहते थे भैया बस चेतन चेतन में ही तो एक है, आत्मा भी चेतन है ब्रह्म भी चेतन है, बाकी तो अलग अलग है ही है। तो कहते हैं अगर थोड़ा सा भी कोई अंतर करता है, उदरम अंतरम कुरते तस्य भयम भवति, उसका भय नहीं छूटेगा, अभय की स्थिति उसको प्राप्त नहीं होगी ना। इस प्रकार से ये सातवां अनुवाक भी यहां पूरा हो जाता है, आठवां मैं कर ही चुका हूं, आठवें का एक श्लोक और नवा ये भगवत कृपा से कल पूरा हो जाए। हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।